नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा एवं इस प्रकार सुरादय देवताओं का समूह सर्वे सारे ब्रह्म रुद्र पुरः सरा तथा शिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाकर भगवान के समक्ष जाने के लिए अशकन समर मन्यु सरंबम अत्यंत क्रुद्ध होकर सुदुरासदम जिन तक पहुंच पाना दुष्कर है। अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाएं, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की नरोत्तम दास ठाकुर ने भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है क्रोध भक्त द्वेष जने। क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। काम क्रोध लोभ मोह मन तथा मत्सर इन सबों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त के लिए समुचित उपयोग। भगवत भक्त कभी भी भगवान या अन्य भगवत भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकता और न ही भगवान भक्त की निंदा सहन करते। इस प्रकार नरसिंहदेव इतने अधिक क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी तक जो भगवान की नित्य संगिनी है उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत करने में समर्थ नहीं हो सका, किंतु क्योंकि भगवान अपना प्रेम प्रहलाद महाराज को जताना चाहते इसलिए सारे देवता तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उनको शांत करने के लिए आगे नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के उपरांत भी अत्यंत क्रोध में भरे हुए। आपने पिछले श्लोकों में ये सुना होगा कि कितने क्रोध में भगवान है और कोई भी उनके आगे जाने की क्षमता नहीं कर पा। देवता तो वैसे भी भगवान से बहुत घबराते हैं, लक्ष्मी जी नहीं घबराती। लक्ष्मी जी को जब कहा गया कि आप जाइए आगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अभी बहुत गुस्से में, तो क्रोध को शांत करने के लिए कि पता नहीं कब तक चलेगा, अगर किसी ने रोका नहीं तो प्रहलाद महाराज को आगे ले जाएगा। तो ये नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रहलाद द्वारा नरसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत कर। चलो रूपात ने इसका इस अध्याय का समरी भी दिया है। जिसमें बताया है कि जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान नरसिंहदेव को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी वे अत्यंत क्रुद्ध थे। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उनको शांत करने में समर्थ नहीं। यहां तक कि नारायण की चिर संगिनी लक्ष्मी जी भी भगवान नरसिंह के सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को कहा कि वे समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंहदेव की वात्सल्यता के प्रति अस्वस्थ थे। सबको भगवान से डर लग रहा है, लेकिन प्रहलाद को कभी भगवान से भय नहीं लगा। क्योंकि ये जितने भी लोगों की इस समय बात हो रही है, इन सब में अगर मिला के देखा जाए तो उसमें भक्त कौन है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज देवताओं को भक्त की श्रेणी नहीं है, ब्रह्मा को भक्त की श्रेणी नहीं प्राप्त होती, और कौन है? देवी लक्ष्मी, उनको भी भक्त की श्रेणी नहीं। राधा रानी को है लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं भक्त की श्रेणी प्राप्त। इसलिए लक्ष्मी जी को भगवान के रास में प्रवेश नहीं मिला था कि जब भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं तो देवी लक्ष्मी उसके अंदर जाना चाहती थी, आप नहीं जा सकते, आपको प्रवेश नहीं है। क्यों? ये भक्तों का स्थान है केवल। ऐसा नहीं है कि जहां पे भक्तों का स्थान है वहां और किसी का प्रवेश नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा एक्सक्लूसिव भक्तों का प्रोग्राम होता है कि जिसमें भक्तों के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं है। उसी तरह से रासलीला है, उसमें भक्त के अलावा और कोई नहीं जा सकता। ऐसे तो भक्त जहां कहीं भी मिलते हैं, भक्त तो ये चाहते हैं कि और भी जितने अधिक से अधिक लोग आ सकते आए। हमारे सारे मंदिर, हमारे सब स्थान, सब जिन जो अपने आप को अभक्त समझते हैं या भक्ति से अभी उनका कोई संबंध नहीं है, उनको भी हम सबको वेलकम करते हैं। लेकिन रासलीला ऐसा प्रोग्राम नहीं, इसलिए देवी लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं। तो सारे इक्वेशन में जितने लोगों की यहां बात हो रही है उसमें केवल एक भक्त है। और वो है प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद की एक ही हिम्मत है कि हाँ, मैं भगवान को शांत करने के लिए भगवान के समक्ष उनके लिए ये माला लेके जाने की हिम्मत कर रहा हूं और भगवान उसको देख के शांत भी हो जाए। अब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतएव उन्होंने उनके सर पर अपना हाथ रखा। नरसिंहदेव भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद महाराज के सर पर, तो आगे श्री प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? इस स्पर्श से प्रहलाद महाराज को तुरंत ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे भक्त को बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती भक्ति के लिए, लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट स्पर्श प्राप्त होते ही कुछ साइड इफेक्ट तो आएगा। साइड इफेक्ट में ब्रह्म ज्ञान प्रहलाद महाराज का। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से तथा पूर्ण भक्ति में आलाद से पूरे होकर ये प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए हैं वे निम्न प्रकार से। तो ये एक तरह से इस सारे अध्याय का महात्म्य। अध्याय क्या है? प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। लेकिन आगे समरी में पहले श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं ऐसे ही कहीं अलटप नहीं आ रही है। ये प्रार्थनाएं उनके श्रीमुख से उस समय प्रकट हुई है जब वो स्वयं भगवान का स्पर्श अपने सर के ऊपर प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये प्रार्थनाएं बोली। तो ये प्रार्थनाओं का महात्म्य है। वैसे भी हमारे भागवतम के अनुसार कृष्ण वांसुदेव में कुछ धर्म अधिकारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कुछ धर्म अधिकारी या आध्यात्म के अधिकारी हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी, अगर वो कुछ बोले तो उनके मुख से निकला हुआ वाक्य हमारे लिए वो पत्थर की लकीर है, उससे तस्य मस नहीं होना, वो पक्का अथॉरिटेटिव है। कितने लोग हैं ऐसे, कौन बता सकता है? 12 स्पिरिचुअल अथॉरिटी और भक्त श्री प्रहलाद महाराज वो 12 में से एक। इसीलिए ये छोटा सा बालक, इसीलिए क्योंकि इनको भगवान का हाथ का स्पर्श प्राप्त है। किसके डिसाइपल है ये? नारद मुनि के डिसाइपल है। हजारों साल तक इन्होंने नारद मुनि के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया है। कैसे? 5 साल की उम्र में कैसे पर हजारों साल कर लिया? अपनी माता की तरफ। इनकी माता ने नारद मुनि जी से ये आशीर्वाद मांगा था कि मेरे घर में जो मेरा बालक है मैं उसको जन्म नहीं देना चाहती तब जब तक उसके पिता अपनी तपस्या करके वापस नहीं आ जाते, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी कि इसको मैंने जन्म दे दिया, इसके तो देवता इसको मारना चाहते हैं, जिनको देवता मारना चाहते हैं उनको मैं कैसे बचाऊंगी, तो इसलिए जब तक ये मेरे घर में है मैं एक स्त्री हूं, इतने आसानी से कोई मुझे नहीं मारेगा, तो मेरे गर्भ में ये सुरक्षित है। जब इसको सुरक्षा देने के लिए इसके पिता तपस्या से वापस आ जाएंगे तब मैं उसको जन्म दूंगी, तब तक मैं उसको अपने गर्भ में सुरक्षित रखूंगा। तो इस प्रकार हजारों साल तक प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नारद मुनि जी के अंतर्गत किया। तो इसलिए भी प्रहलाद महाराज स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, ऐसे ही नहीं। आगे कृपाल बता रहे हैं क्या उपदेश दिए हैं प्रहलाद महाराज ने। एक्चुअली ये सारे चैप्टर्स के ऊपर मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखा सकता था लेकिन आज ये टीवी चल नहीं रहा है, ऑलरेडी रेडीमेड है कंप्यूटर में, यू वुड हैव रियली लाइक टू, लेकिन कोई चीज नहीं चल रही है आज। तो आगे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो भगवान की कृपा शरण ले रहा हूं, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां तक कि 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि अभक्त हो उन्हें उतना प्रिय नहीं जितना एक चंडाल के घर में जन्म हुआ वह व्यक्ति जो भक्त, चाहे उसका जन्म चंडाल के परिवार में हुआ है, भगवान को वो अधिक प्रिय है। इसके मुकाबले जिसका 12 ब्राह्मण गुणों से संपूर्ण और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इसके ऊपर सारा मूवमेंट हमारा बेस्ड है। हमारे परंपरा के बहुत सारे गुरु भी किसी ब्राह्मण जन्म में परिवार किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए। चलो प्रभुपाद का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, स्वयं किसी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नहीं है। तो बहुत सारे हमारे श्रृंखला में ऐसे ब्राह्मण होने से नहीं होने से कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये जो भक्ति है, भक्ति सबके लिए एक समान। चलो प्रभुपाद का उनके गॉड ब्रदर्स ने बहुत सारे साधुओं ने संतों ने जो अपने आप को बहुत बड़ी अथॉरिटी समझते थे उन्होंने बहुत श्रील प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया कि ये क्या तुम हिप्पियों को भक्त बना रहे हो, मरे हिप्पियों को हरिनाम दे रहे हो, तमाशा बनवा रहे हो हमारे भगवान का। चलो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तमाशा मैं नहीं बना रहा हूं भगवान के नाम का, तुम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि तुम समझते हो कि भगवान का नाम तुम्हारी धरोहर है। नहीं है तुम्हारी धरोहर, सारे संसार के लिए भगवान का नाम, कोई भी मलिच कोई भी चंडा भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम की। चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेके सबसे ज्यादा निंदनीय जो कार्य किया, जिसकी सबसे ज्यादा निंदा हुई, वो यही था। अरे ये क्या सड़कों पे जाके हरि नाम सबको दे रहे हो, किसी की जाति नहीं रही पूछते, कोड़ी को भी देते हो शूद्र को भी देते हो, ये क्या ये हरि नाम है, ये कैसे फ्री बैठ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, ये फ्री ही बनेगा और ये सबके लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कोड़ियों को गले लगाया, कोड़ी कितने लोग हैं यहां कोड़ी को गला लगाने के लिए खुश हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कोड़ियों को गले लगाया, पठानों को डाकुओं को बुद्धों को सबको हरि नाम में डाल दिया। आज भी अफगानिस्तान में भी और कुछ स्थानों पे यहां भी पठान वैष्णव है, पठान वैष्णव स्वयं जगन महाप्रभु के बनाए हुए आज तक भी वो मृदंग लेके करतार लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते। जप करने वाले अभी नहीं मिले, अंगले कीर्तन करने वाले मिले, कम से कम कीर्तन कर रहे। स्वयं जगन महाप्रभु के बनाए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने रखी हरिनाम का प्रचार करते। तो जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी, तो फिर चलो प्रभुपाद कहते हैं मैं क्यों हिप्पियों को इससे वंचित होने दूं। अमेरिका की गवर्नमेंट लाखों करोड़ों डॉलर स्पेंड कर रही है कि किस तरह से हमारी नई जनरेशन एलएसडी से दूर हो जाए। मैं कर रहा हूं बड़े आसानी से, हरि नाम दे दो एलएसडी ले लो। मतलब जिसको आप हरि नाम दोगे, जिसको हरि नाम का रस लग जाएगा वो एलएसडी को छोड़ देगा। आप किसी से कुछ लेना चाहते उसको कुछ दोगी तो सही ना वापस। तो जब उसको हरि नाम का टेस्ट नेक्टर रस प्राप्त होगा तो वो ये छोटी मोटी चीजें उनको त्यागने के लिए तैयार हो जाए। कोई प्रश्न है अभी तक जो बताया? यस प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न है कि लक्ष्मी जी भक्त की श्रेणी में नहीं है, उसका उसका क्या खुलासा करना है। और दूसरा श्री संप्रदाय भी है, ये थोड़ी ज्यादा टेक्निकल बात है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ऐसा प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा है। क्योंकि एक्चुअली हम भक्त इस समय उसको कह रहे हैं जो माधुर्य में, माधुर्य भक्ति, माधुर्य भक्ति में पति पत्नी का संबंध नहीं होता, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप नहीं है, केवल इंटरनल रिलेशनशिप है। वो क्या है? द रिलेशनशिप ऑफ लव, केवल प्रेम। जैसे गोपियों को भगवान से जो प्रेम था उसमें ना कोई लालसा, ना कोई शिष्टाचार, ना कोई कारण, अहेतु की अप्रतिहता, कंप्लीटली इनफॉर्मल ऑल्सो, कोई शिष्टाचार नहीं। कोई गोपी आके तो भगवान के ऊपर भी बैठ रही है और भगवान उसके ऊपर पैर भी रखते, वो भी ठीक है। तो ये जो संबंध है, शॉर्ट में बताएंगे नहीं तो ये तो सारी क्लास इसी में लग जाएगी। तो शॉर्ट में एक दो उदाहरण देखे, उसको कहते हैं माधुर्य। लेकिन देवी लक्ष्मी उसमें नहीं है, उनके पैर तो बहुत दूर की चीज है, शरीर का निचला अंग का कोई पोर्शन भगवान विष्णु को वो टच भी नहीं होने देगी। सारा दिन आप देखते हो गर्भदक्षा विष्णु के रूप में, जब भगवान विष्णु रूप में गर्भोदक सागर में गर्भदक्षा विष्णु के रूप में योग निद्रा में शयन करते हैं तो देवी लक्ष्मी हर समय उनके चरणों में रहती। एंड दैट इज डिवोशनल सर्विस. डिवोशनल सर्विस तो वही है, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस शी इज डूइंग. लेकिन फिर भी वो भक्त की श्रेणी में है क्योंकि वो माधुर्य में नहीं है. उनका भगवान विष्णु से पति पत्नी का संबंध भी है. दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर हस्बैंड वाइफ. कभी आपने सुना है कि लक्ष्मी और विष्णु पति पत्नी, लक्ष्मी और नारायण पति पत्नी, राइट? फ्रेंड्स नहीं. लक्ष्मी का कोई और पति नहीं हो सकता. हो सकता है, कभी सुना है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं. सारे गोपियों के अपने अपने पति थे, इंक्लूडिंग श्रीमती राधा रानी. तो ये फाइन लाइन. जहां तक श्री संप्रदाय की बात है, ये जो संप्रदाय है ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग अगर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं तो हम ब्रह्मा जी से नहीं, और जो श्री संप्रदाय है वो देवी लक्ष्मी से आए. नहीं, वो नॉलेज उनके थ्रू आई. तो डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा और से विष्णु द नॉलेज गोज इन टू फोर पार्ट्स. कुमारों के पास ये देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, ऐसे. तो दैट्स जस्ट अ मीडियम और चैनल ऑफ नॉलेज पासिंग. दैट डजंट मीन कि श्री संप्रदाय के लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं. नहीं, पूजा तो वो ही विष्णु की वो भी करते हैं. कुमार संप्रदाय वाले भी वो ही विष्णु की पूजा करते हैं. जस्ट बिकॉज वो कुमार संप्रदाय के हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान विष्णु की जगह कुमारों की पूजा करते हैं. कुमार भी भगवान समान है, लेकिन फिर भी पूजा भगवान विष्णु की ही होती है. तो उससे कुमारों की पूजा उसमें इंक्लूडेड है, राधा रानी की पूजा उसमें इंक्लूडेड है. ब्रह्मा जी की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो विष्णु जी की पूजा में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो ये कॉमन पिटफॉल है जिसमें बहुत से लोग गिरते हैं. आपने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा जिन्होंने पूछा नहीं. और कोई या वो लक्ष्मी का सम्मान, देवी रुक्मणी भी रासलीला में नहीं जा सकती. गोपियों को रुक्मणी के सामने भगवान मिलते भी नहीं है. अगर कोई वृंदावन से भगवान को मिलने के लिए आया तो रुक्मणी के सामने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रासा वासा है. ये दूसरा रास है और ये दूसरा रास है. माधुर्य में और कोई चीज मिक्स नहीं होता, और किसी चीज में बीच में माधुर्य डालना वो भी बहुत कठिन कार्य है. भगवान भी नहीं करते ऐसे. That clear or yes. शांत बाबू अर्जुन की पूजा नहीं होती, सारे संसार में होती है अर्जुन की पूजा. जहां कहीं भगवान की पूजा होती है, भगवत गीता का संदेश देते हुए या युद्ध भूमि में, वहां साथ में हमेशा अर्जुन खड़े रहते. हाँ, कृष्णार्जुन के मंदिर भी हैं, सब जगह जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा योगेश्वर रूप में उस रूप में होती है जब उन्होंने भगवद गीता का संदेश दिया था, तो अर्जुन की पूजा हमेशा होती है साथ में। बद्रीनारायण जाएंगे बद्रीनाथ, तो वहाँ नर नारायण की पूजा होती है, वो भी कृष्ण और अर्जुन है, तो वहाँ भी बद्रीनाथ में भी आप कह सकते हैं उस तरह से कि अर्जुन की पूजा होगी। सारी दुनिया करने जाते हैं फॉर्मली। भक्त से यहाँ पे क्या मतलब है कि भक्त प्रहलाद का संबंध भगवान से कोई भी एक्सटर्नल संबंध नहीं है, वो भक्त और भगवान का संबंध है। कोई राय और रीजन नहीं है उस संबंध का इंटरनल के अलावा। इंटरनली आई एम द इंटरनल सर्वेंट, सो दैट इज द रिलेशनशिप। कोई मुझे रिलेशनशिप रखनी है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल संबंध नहीं है। प्रहलाद हैज नो ऑब्लिगेशन, वो तो एक दैत्य के घर में पैदा हुआ है, असुर परिवार में। रावण के तो कम से कम पिता ब्राह्मण थे, केवल माता राक्षस थी। ये तो बेचारा कयादु की प्रवृत्ति कैसी भी हो, लेकिन थी वो असुर परिवार। जब पहले हिरण्यकश्यप जप करने के लिए तपस्या करने के लिए गए, तो इंद्र ने वहां एक तोता भेज दिया, तो वो तोता जो कुछ हिरण्यकश्यप बोलते थे वो उनके न करता। तो अगर हिरण्यकश्यप कहें हरे कृष्णा, तो पीछे से तोता बोले हरे कृष्णा, हरे राम, तो पीछे से तोता बोले हरे राम, कृष्ण कृष्णा तो बोले कृष्ण कृष्ण, राम राम तो बोले राम राम। तो उनकी मेडिटेशन के लिए, तपस्या के लिए ध्यान ही नहीं करता। अब एक तोते को मारना इस इतने बड़े असुर दैत्य के लिए चुटकी भर का काम है, फूंक भी मार देगा अच्छी तरह से तो ये तोते के प्राण निकल जाएंगे। लेकिन तपस्या के समय आप ये सब नहीं कर सकते, क्रोध भी नहीं कर सकते, कैसे तपस्या होगी। तो हिरण्यकश्यप घर वापस आ और आगे अपनी पत्नी कयादु को बताया। कयादु हैरान, आप तो सहस्रों वर्ष की पूजा तपस्या के लिए निकले थे, आज ही वापस आ गए। क्या वहां एक तोता बहुत परेशान कर रहा था, आज मैं उसका काम कर रहा हूं लेकिन अब तपस्या नहीं हो सकते, मुझे कल जाना पड़ेगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में नहीं। क्या कहता था तोता? वो तोता कहता था राम राम। क्या क्या कहता था तोता? राम राम, खाली राम राम, कि हाँ कृष्ण कृष्ण भी बोलता था। तो कयादु को ये अच्छा मौका लग गया कि मेरा पति भगवान नाम का जप कर रहा है, तो उसने कई बहानों से कई बार पूछा क्या बोलता था तोता। क्या जब हिरण्यकश्यप को समझ में आ गया तो उन्होंने बताना बंद कर दिया, तो फिर पूछती क्या राम राम बोलता था? हाँ हाँ भाई, कहा तो राम राम बोलता। तो जब इतना दोनों ने नाम का पवित्र जप किया और उसी रात सहवास होने में प्रहलाद की को कंसीव किया उसकी मां, दोनों ने बहुत भगवान नाम का जप किया इस बहाने से, एक दूसरे को कराने के बहाने से। तो उसी रात प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में आए, वो पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को कोई असुर के घर में जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो पूरी तरह से असुर परिवार में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है भक्तराज प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। और कोई प्रश्न? ये डिस्क्रिप्शन एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे जो पाकिस्तान में प्रचार किया करते थे कि वो कभी कभी उनको मिलने भी जाते थे, उनके साथ में हरिनाम संकीर्तन के लिए भी जाते थे। तो कुछ ऐसे पठान वैष्णव पाकिस्तान में भी हैं, कुछ ऐसे पठान वैष्णव अफगानिस्तान में भी हैं, और कुछ ऐसे पठान वैष्णव हिंदुस्तान में भी हैं, कश्मीर वगैरह बहुत कम है। लेकिन अभी भी वो दिन में जो कुछ करें, शाम को बैठ के अपना मृदंग और करतार लेंगे, हरिनाम का कीर्तन। इस्लाम के भी फॉलोअर वो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते, वो अपने आप को वैष्णव पठान या पठान वैष्णव कहते। तो उस समय हो सकता है वो चार नियमों का पालन करते हो, लेकिन अभी कोई उनमें से जो मेन मेन लोग हैं वो करते भी होंगे। जैसे कि मुस्लिम भी जो है उसमें जो हाईएस्ट क्लास है मुस्लिमों में, उसको कहते हैं सूफी। और सूफी अभी भी मीट नहीं खाते और शराब नहीं पीते, और वो मुस्लिम है। तो वो उनका भी सिस्टम है, उसी प्रकार से हमारे पठान वैष्णवों का भी सिस्टम ऐसा। प्रभु जी बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें जो लीडर्स हैं वो चार नियमों का पालन, लेकिन बाकी कोई नियम का पालन किया किया नहीं किया, लेकिन एक नियम का पालन करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने बाकी के पठान वैष्णवों के साथ बैठ के कीर्तन किया। जुम्मे की रात, क्योंकि वहां के संसार में वही छुट्टी वाला दिन होता, मुस्लिम वर्ल्ड में छुट्टी का दिन शुक्रवार होता। तो वो जो कुछ शुभ काम करते हैं, जैसे हम लोग संडे को संडे फीस करते हैं, हमारे भी मंदिरों में संडे फीस मुस्लिम वर्ल्ड में फ्राइडे को होती है। हमारा संडे फीस प्रोग्राम फ्राइडे को सारे मुस्लिम, और जो सैटरडे का प्रोग्राम है वो थर्सडे को नाइट बिफोर चलता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? आगे चले है पूछिए। मिश्रित भक्ति, प्रभु जी का प्रश्न है कि अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त भगवान किसी और चीज से प्रसन्न नहीं होते। तो मिश्रित भक्ति, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि भगवान शुद्ध भक्ति के अलावा और किसी चीज से प्रसन्न बिल्कुल ही नहीं होते, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शुद्ध भक्ति इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बेस्ट वो है, जैसे कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि पहले कोई नहीं, कर्म कांड नहीं सही, फिर तरी तरीके के योगा लेटर सिस्टम है कि जो व्यक्ति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है वो कम से कम श्रद्धा में आ जाए, जिसको थोड़ा बहुत श्रद्धा है वो थोड़ा सा निष्ठा में आ जाए। तो ग्रेजुअल प्रोसेस के, चलो वेद के नियमों का ही पालन कर लो, फिर निष्काम में ही आ जाओ, परोपकार में ही आ जाओ। लेकिन बेस्ट क्या है? अगेन शुद्ध भक्ति। तो उसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक परिवार ने में एक बच्चे ने जन्म लिया और सारे परिवार में सब चाहते हैं कि ये बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन जब 5 साल का हो जाएगा या 3 साल का हो जाएगा तो क्या उसको पीएमटी का एग्जाम देने भेज दोगे? अरे भाई हमें तो डॉक्टर बनाना है, इसको मेडिकल स्कूल भेजो। नहीं, मेडिकल स्कूल में 3-5 साल के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, पहले उसको प्री स्कूल में भेजना पड़ेगा, किंडरगार्टन में भेजना पड़ेगा, प्राइमरी में भेजना पड़ेगा, मिडिल स्कूल में, सेकेंडरी में, पोस्ट सेकेंडरी में, तब कहीं जाके तो वो मेडिकल स्कूल जाएगा। तो अल्टीमेटली हु विल बिकम अ डॉक्टर? द वन हु ग्रेजुएट्स फ्रॉम द मेडिकल स्कूल। लेकिन बाकी सब भी जो उस तरफ जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट होगा कौन नहीं, वो तो 1000 बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने उसमें से 1 या 2 बनते हैं। लेकिन जब तक वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं दे आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ऐसे शब्द यहां यूज किए गए हैं लेकिन तात्पर्य उसका फिर भी यही है कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सटीक तरीका या भगवान सबसे ज्यादा किस चीज से प्रसन्न होते हैं वो है शुद्ध भक्ति। उसके अलावा दूसरी भक्ति, मिश्रित भक्ति, उससे नीचे ज्ञान, ज्ञानी भी जो है, योगी भी जो है, भगवान उससे भी प्रसन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान ज्ञानी और योगी से अप्रसन्न है। लेकिन सब जैसे कि भगवदगीता में बताया 4 तरीके के लोग आते हैं भगवान के पास, और क्या बताया भगवान ने, मीनिंग 4 तरीके के लोग कौन आते हैं, आरती अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, उसमें से चारों में से किसको एक्सेप्ट करते हैं भगवान? चारों। कभी नहीं कहा कि नहीं 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 आरती को नहीं आने दो मेरे पास, ये केवल दुखी है इसीलिए आ रहा, नहीं, उसको भी भगवान एक्सेप्ट। जो रोटी कपड़ा और मकान मांगने आता है उसको भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। जो ये कहता है मैं 2 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा भगवान मेरा 200 रुपए का फायदा करा दो, उसको भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट करते, कम से कम भगवान के पास आया, किसी भी लेवल पे कम से कम भगवान के पास आया। जो कर्म कांड में भी विश्वास करते हैं उनको भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। कर्म कांड, वेदों में दी हुई रीति, ये सब भगवान की दी हुई है। सत्यनारायण की कथा, ये सब भक्ति की तरफ बढ़ने के, भक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ने के छोटे छोटे स्टेप हैं जिनसे हमें ऊपर भक्ति की तरफ जाना है। अगर हम यहीं रह जाएंगे तो फिर बेटर देन नथिंग। जैसे हम चाहते थे कि ये बच्चा हमारा डॉक्टर बने लेकिन कम से कम बीएससी की डिग्री लेगी इसने, चल कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं भी बना कम से कम बीएससी हो गया, फिर और ट्राई करें। बात समझ में? और कोई प्रश्न?
श्री प्रभुपाद की जय।